ಚಿಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸೆ ಸಮರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ್ ಮೇ ಟೀಕನಾ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ್ ಮೇ ರಹನೆ ಕಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಬನಾನಾ ಯಾ ಕಹೇ ನಿರಂತರ ಬಾಬಾ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ನಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಬನ್ನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ಹಮಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋನಾ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ ಖಜಾನೋ ಸೆ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಸಂಪನ್ನ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಕಹೆ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ಯೇ ಹಮೇ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ ಕಿ ಬಾಬಾ ಕೋ ಹಮೇ ನಿರಂತರ ಯಾದ್ ಮೇ ರಹನೆ ಕಾ ಕ್ಯೋ ಪುರ್ಷಾದ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಬಾಬಾ ಮುರಲಿ ಮೇ ಕಹತೆ ಹಿ ಹೈ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಕರೋ ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಕರೋ ಮೇರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ಸದಾ ರಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಸದಾ ಹಮೇ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ಕ್ಯೋ ರಹನಾ ಹೈ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಸೆ ಸಮಜ್ನಾ ಹೋಗಾ ಪಹಲಿ ಬಾತ್ ಕೇವಲ ಏಕ ಹೀ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೈ ಜೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಸ್ರೋತ ಹೈ ಸೋರ್ಸ್ ಹೈ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ಪಾವರ್ ಹೌಸ್ ಹೈ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕಾ ಸೋರ್ಸ್ ನಹೀ ಹೈ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹಮೇಶಾ ಹೈಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆ ಲೋವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿ ತರಫ ಪ್ರವಾಹಿತ ಹೋತಿ ಹೈ ಜಬ್ ಹಮ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ ತೋ ಸ್ವತಃ ಹೀ ಪಾವರ್ ಹೌಸ್ ಸೆ ಶಕ್ತಿಯಾ ಆತ್ಮ ಮೇ ಪ್ರವಾಹಿತ ಹೋನೆ ಲಗತಿ ಹೈ ಔರ್ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೋ ಸೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಆತ್ಮಾ ರೂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋತಿ ಹೈ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಹನೆ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಜೊ ಪಾಪೋ ಕಾ ಬೋಝಾ ಹೈ ವೋ ಬೋಝಾ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಖತಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೇವಲ ಏಕ್ ಬಾಬಾ ಹೀ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಹೈ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಹನೆ ಸೆ ಆತ್ಮಾ ಭೀ ಪ್ಯೂರ್ ಬನ್ತಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮಾವೋ ಕೋ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಶರೀರ ಭೀ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಪಾಂಚ್ ತತ್ವ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ಆತ್ಮಾ ಮೇ ಭೀ ವಿಕಾರೋ ಕಿ ಖಾದ್ ಹೈ ಇಸ್ಲಿ ಅಗರ್ ಉನ್ಕೋ ಹಮ್ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಆತ್ಮಾ ಹಮಾರಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬನ್ತಿ ಜಾತಿ ಹೈ ತೀಸರಿ ಬಾತ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಹನೆ ಸೆ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಅನೇಕ ಪದ್ಮೋ ಕಿ ಕಮಾಯಿ ಹಮಾರಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಅಖುಟ್ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕಿ ಖಜಾನೋ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ और ये संगम युग ही अविनाशी कमाई करने का युग है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई केवल बाबा की याद से ही होती है। इन सभी बातों को समझकर हमें बाबा की स्मृति में सदा रहने का पुरुषार्थ बढ़ाते जाना है। तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए कुछ एक बातों पर हमें ठोस अभ्यास करना होगा, तभी हमारी ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। पहली बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए हमेशा हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देह की स्मृति जब रहती है तो देहधारी देह के पदार्थ याद आते हैं, और जैसे आत्मा की स्मृति में हम रहते हैं तो निराकारी घर की और निराकारी बाप की हमें याद सोते ही आती है। तो जितना आत्मा की स्मृति सहज निरंतर और नेचुरल होती जाती है, उतनी शिव बाबा की स्मृति सहज निरंतर और नेचुरल होती जाती है। इसलिए देह के भान को छोड़कर आत्मा के भान में टिकने का पूरा पूरा प्रसाद करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ हमारा शरीर होता है। इसलिए हमें अपने शरीर के साथ बहुत गहरा लगाव होता है। इसलिए कहते हैं, जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। तो बाबा की स्मृति में रहना है तो हमें आत्मा की स्मृति में रहने का अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। एकांत में बैठकर विधि पूर्वक स्वयं को बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा देखना है और उसमें स्थित हो जाना है, और आत्मा के गुणों का बहुत सुंदर अनुभव करते जाना है। इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे पाप भस्म होने लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाते चलें। हम देखते हैं जितने भी महारथी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं, उन्होंने इस पहले पाठ को बहुत पक्का किया है, तभी वो इसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुए हैं। दूसरी बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए हमें निरंतर समानधारी होकर रहने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। आत्मा का अभ्यास करने से हम देह से न्यारे होते हैं, और समान का अभ्यास करने से इस देह की दुनिया से न्यारे होते हैं और अपनी निराकारी दुनिया में जाते हैं और बाबा के पास बैठ जाते हैं। तो समान में स्थित रहने से हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, और जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है तो माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर ऑटोमेटिक हम रहते हैं। हम सभी महान आत्माएं सभा में बैठे हैं, करोड़ों में सिलेक्शन स्वयं भगवान ने किया है, तो इतनी महान आत्माओं को सतयुग त्रेता युग में राजा महाराजा का सिंहासन पर मिलने वाला है। तो जब सिंहासन पर हम बैठेंगे तो हमारे में वो ईश्वरीय नशा, नशे की रॉयल्टी हमारे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो, वो संस्कार हमें अभी आत्मा में भरना है। और उसके लिए बाबा ने सोमान का सिंहासन हमें दिया है। बाबा कहते हैं मेरी एक आशा है जो आप सभी को पूरी करनी है। कौन सी आशा है? मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा अनुशासन कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पर करता है। सभी तालियां एक बार अच्छी तरह से बजाएंगे। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। इस लाल जन्म में साधारण पोजीशन में पहुंचे हैं, लेकिन असाधारण पार्ट हमारा इस बेहद के ड्रामा में है। हीरो पार्ट धारी हम इस ड्रामा के हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ड्रामा के डायरेक्टर के साथ है और उनसे हमें हर रोज डायरेक्शन श्रीमद के रूप में मिलता है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। इसलिए सोमान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है, बाबा की स्मृति में ठिकाने के लिए मदद करता है। इसलिए सारे दिन भर में सोमानधारी होकर हमें रहना है। तीसरी बात, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए सारे दिन भर में बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि आत्मा समझकर निराकारी बाप को हम जब याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद उस अभ्यास में हमारी रुचि थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा नेमनेस चाहता है। जब उसको नवीनता नहीं मिलती है तो उसको जीवन बोर होने लगता है। तो इतने ऊंचे बाप की स्मृति में रहना है तो उसके लिए अलग अलग रूप से अलग अलग संबंधों में हमें सारे दिन भर में बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार हूँ, मुझे यूज करो। बाबा को यूज करो या लूज करो, ये हमारे हाथ में है। अगर निरंतर बाबा को याद करना है तो वैरायटी रूप में बाबा को याद करने से उनकी स्मृति में सदा दिलचस्पी बनी रहती है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलग अलग संबंधों में हमें याद करना है, उसमें भी विशेष 11 संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करते जाना है। छोड़ना बाबा को नहीं है, किसी न किसी रूप में बाबा की स्मृति में हमें रहना जरूर है। पहला संबंध, जैसे हमारी आंख खुलती हैं बाबा को गुड मॉर्निंग करें और उसके बाद बाबा को पिता के रूप में अनुभव करें। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर उनकी गोदी में बैठें, उनकी गोदी में खेलें और उनका आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करते चलें। उसके बाद जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तब बाबा को हमें टीचर के रूप में अनुभव करना है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान हमें साकार रूप में पढ़ाने आएंगे और वो हमें अभी पढ़ा रहे हैं। ये कितनी ऊंची बात है, कितने श्रेष्ठ भाग्य की ये निशानी है। तो शिक्षक के रूप में हमें बाबा को याद करना है। शिक्षक का हाथ मेरे सिर पर सदा रहे, उसके लिए जो शिक्षक हमें मुरली में होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को हमें पूरा करके ही आना है। और जितना जितना हम शिक्षक का संबंध अनुभव करते हैं, मुरली का अध्ययन करते हैं, तो आत्मा में ज्ञान का बल बढ़ने लगता है और बुद्धि हमारी बहुत विशाल होती है और बाबा की स्मृति में स्वतः ही टिकने लगती है। जैसे हम सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं उस समय बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव करना है, बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करने हैं और बाबा का वरदानी हाथ अपने माथे पर अनुभव करना है। और जो सदगुरु ने हमें मंत्र दिया है मन मना भव का, उसका जाप हमें सारे दिन भर में करते रहना है। बाबा के खास बच्चे थोड़े हैं, आम तो सभी हैं। हम खास बच्चे हैं। खास बच्चे किनको कहते हैं? हाँ भाई, कौन से बच्चे खास बच्चे कहलाते हैं? खास उल्टा है सखा, जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो बाबा के खास बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि हम अपने दिल का राज सबसे छिपाते हैं, लेकिन जहां हमें सखा मिल जाता है दिल का राज हम खोल देते हैं। इसलिए बाबा को सखा के रूप में अनुभव करें, उनके साथ बैठें, खाएं, खेलें और बहुत अच्छी तरह से दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करें। ये चौथा संबंध। पांचवा संबंध है बच्चे के रूप में बाबा को याद करना, बाबा को बच्चा बनाना अर्थात बाबा को वर्षा देना। चाहे कुमार है, कुमारिया है, कोई भी है, बाबा को बच्चा बनाकर वर्षा देना ही है और दे सकते हैं। अगर हम वर्षा नहीं देते हैं तो बच्चा बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये लौकिक बच्चे तो हमें स्मशान तक लेके आएंगे, ये मेरा जो बच्चा है मुझे घर तक वापस ले जाएगा और सतयुग की राजधानी में भेजेगा। ये बहुत आज्ञाकारी वफादार बच्चे हैं, इसलिए उसको बच्चे के रूप में जरूर अनुभव करना है। और छठवा संबंध है बाबा को माँ के रूप में जरूर अनुभव करना है। दुनिया वाले कहते हैं हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने मुझे इतना पाला पोसा, जिसने मेरे लिए कितनी रातें नींद नहीं की, गंदगी से मुझे निकाला, उसकी ममता को मैं नहीं भूल सकता हूँ, मुझे माफ करो। अभी 83 जन्मों की माँ को छोड़ दिया, 84 जन्म की माँ में हम फंस गए, तो उस माँ की ममता से भी बाहर निकलने के लिए हमें बाबा को अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है। तो जैसे जैसे बाबा को अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करते जाते हैं, उतना लौकिक माँ से जो मोह है वो धीरे धीरे मिटने लगता है और बाबा के तरफ प्यार बढ़ने लगता है। हाँ भाई, कितनी माँ है आप सभी को बताइए कि आप बहुत लाडले हैं, कितनी माँ है जल्दी बोलो। हाँ जी, 4 हैं। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, 3 माँ है। देखो आप कितने लाडले बच्चे हैं, 6 माँ की पालना मिल रही है, 6 माँ की। तालियां भी नहीं बज रही। पहली माँ जिसने ये शरीर को जन्म दिया, दूसरी माँ जिसने ब्रह्मा माँ ने मुझे ब्रह्मा मुख से जन्म देकर ब्राह्मण बनाया, तीसरी माँ जो मम्मा है हमें अभी भी सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है, चौथी ड्रा माँ जब भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है तो ड्रामा रूपी माँ हमें अपने आंचल में छिपा लेती है और व्यर्थ के तूफान से बचा लेती है, और 5वीं माँ है धरती माँ, भारत माँ, जिसके मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है, और सबसे बड़ी माँ परमात्मा जिनसे हमें इतना दुलार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, वो सबसे बड़ी माँ है। तो हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें इतना प्यार और दुलार मिल रहा है। 7वां संबंध है, बाबा को हमें साजन के रूप में अनुभव करना है। बहनों को तो सजनी बनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन भाई लोग जो है ना, कितने सजनी कैसे बनो, उनको अहंकार आता है थोड़ा, मैं बाबा की सजनी कैसे बनूं। भाई, सजनी बने बिना आपका उद्धार नहीं है, आपको सजनी बनना होगा। शरीर सजनी नहीं है, आत्मा सजनी है। उस निराकार राम ने हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को, सजनियों को रावण की जेल से निकाला तो हमारा वो साजन हो गया ना भाई। तो साजन के रूप में भी हमें बाबा को अनुभव करना है, और दिल का जो प्यार है वो उस साजन के तरफ सौंप देना है। बाबा कहते हैं, मैं आपका साजन हूँ, मुझे मंजूर है, मैं आपके दिल तख्त पर बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों के बजाय किसी तीसरे को बिठा दिया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, ये बात ध्यान में रखना। तीसरे नेत्र में मैं और बाबा, बहुत अच्छी बात है, तीसरा अगर कोई बैठ गया तो ये तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देगा, इसलिए इस हमें इस बात को रियलाइज करना है, केवल मैं प्यार का सौदा अपने शिव साजन के साथ कर चुकी हूँ और किसी के साथ दिल का प्यार शेयर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। 8वां संबंध, बाबा को सर्जन के रूप में हमें अनुभव करना है। कोई पुराना संस्कार है, जो कोई बीमारी है आत्मा की, बाबा को तुरंत बुलाओ, आह्वान करो, रूहानी सर्जन आओ और इस पुरानी बीमारी की सर्जरी करो। जैसे सर्जरी के लिए डॉक्टर को हम शरीर से सरेंडर करते हैं, वैसे सुप्रीम सर्जन को बुद्धि के द्वारा हमें सरेंडर करना है और बाबा सर्जरी करेंगे, उस बीमारी से हमें मुक्त करेंगे। 9वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है, जब भी हम दुविधा में होते हैं, थोड़ा सा मूंझ जाते हैं, बाबा को बुलाइए, बाबा मुझे आप गाइड कर लीजिए। दुनिया वाले जो गाइड है वो कल का भी पता नहीं है उनको, और उनका अगर गाइडेंस देंगे तो किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ होता है। बाबा जो गाइड है तीनों कालों को जानने वाला है और निस्वार्थ गाइडेंस हमें देते हैं। अंतिम समय ऐसा गाइडेंस हमें करेंगे कि इधर जाओ इधर नहीं जाओ, ये काम करो ये नहीं करो, ऐसा हमें डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे। लेकिन उस संबंध को हमें अभी से अनुभव करते जाना है। दसवां संबंध, बाबा मेरा रक्षक है। हर कोई चाहता है मेरा कोई बैकबोन हो, किसी का हाथ मेरे सिर पर हो, तो सर्वोच्च रक्षक बाबा मेरा हमेशा पांडी रखा है, मेरे साथ साथ चलता है, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं हो सकता है। निर्भय होकर हम रहेंगे। सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा बनने की पहली क्वालिटी है निर्भयता, तो उस निर्भयता को हमने अपनाना है। और ग्यारहवां संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। किसी एक का डर होना बहुत जरूरी है। परिवार में भी माँ बाप आपस में फिक्स करते हैं कि तुम डांटते रहना और मैं प्यार करता रहूंगा, तभी बच्चे सुधरेंगे, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बाप के रूप में हमें बाप प्यार तो दे रहा है, लेकिन धर्मराज के रूप में वो हमेशा मुझे सुपरवाइज कर रहा है, हमेशा वो देखता रहता है। इसलिए मुझे छोटा मोटा कोई भी विक्रम नहीं करना है ताकि सजा खानी पड़े। वंडरफुल स्थिति बनाना है। हम यहाँ क्यों आए भाई, इतना दूर से आप यहाँ आए हैं, किस लिए? वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए आए हैं। वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना है, वंडरफुल, एक बाप का धर्मराज के रूप में पूरा डर होगा तो कोई विक्रम नहीं बनेगा और हमारी स्थिति वंडरफुल होगी। चौथी बात, स्मृति स्वरूप बनने के लिए चौथी बात, साक्षी दृष्टा बनने का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। जब तक इस संसार से हम साक्षी दृष्टा नहीं होते हैं, बाबा को साथी रूप में अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे शिव बाबा परम धाम से इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहकर इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे हमें भी अपने पार्ट को और अन्य आत्माओं के पार्ट को, इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है। तो हम स्वतः ही डिटैच होते जाएंगे और बाबा के साथ अटैच होकर रहेंगे, बाबा की स्मृति स्वतः ही रहेगी। इसलिए कहते हैं जितना इस दुनिया से न्यारा उतना उस दुनिया से प्यारा। इस संसार में रहते हुए इस संसार से न्यारा होना है और बाबा को अपना संसार अनुभव करना है, तो स्वतः ही हम उनके स्मृति में सदा टिक सकेंगे। पांचवी बात, सदा स्मृति स्वरूप बनकर रहने के लिए हमारा दृढ़ लक्ष्य हो कि मुझे याद और सेवा का बैलेंस रखना है। सारे दिन भर में इस बैलेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन देख रहे सेवा में बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा है अमृत वेला अच्छा करते हो, मुरली अच्छी तरह से सुनते हो, और जैसे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं योग को किनारे रख देते हो। नहीं, अभी हमने योग और सेवा का बैलेंस रखना है, उसके लिए कर्म के साथ योगाभ्यास, बाबा की स्मृति मेंटेन करने पर विशेष ध्यान देना है। कर्म हम अकेले करते हैं तो सिंगल फोर्स से हम काम करते हैं, लेकिन बाबा की याद में रहकर करते हैं तो कर्म डबल फोर्स से करते हैं, तो उसमें हमें अच्छी तरह से सफलता भी मिलती है और डबल कमाई भी हमारी होती है। इसलिए योगाभ्यास में कर्म करते रहें, कर्म में योगाभ्यास करते रहें, दोनों साथ साथ चलते रहें, दोनों अलग अलग अनुभव न करें, तो बाबा की स्मृति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अभी छठवीं बात है, सदा स्मृति स्वरूप बनकर रहने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना हमें रखनी है। सबके प्रति, कोई हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करे, ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव किसी के मन में हमारे प्रति हो, कोई बात नहीं, बड़े व्यक्ति की निशानी है, उसके मन में हमेशा क्षमा भाव रहता है और वो किसी की भी गलती अपने दिल में नहीं रखता है और सबके प्रति शुभ भावना रखता है, सबके प्रति शुभ कामना रखता है। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं तो दो खतरनाक व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपकते लगते हैं। पहला, जिसके प्रति हमारा बहुत गहरा स्नेह होता है, वो व्यक्ति बुद्धि में टपक सकता है, या किसी के प्रति अशुभ भावना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, वो व्यक्ति बुद्धि में टपकता है और बाबा की स्मृति को तोड़ देता है। इसलिए मेरा रास्ता साफ हो, मेरे रास्ते में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके प्रति मेरा बहुत प्यार है या जिसके प्रति मेरे मन में अशुभ भावना है, तो हमें चश्मा पहनना है शुभ भावना और शुभ कामना रखने का। जो भी आत्मा मेरे सामने आती है, बाप समान, सबके प्रति शुभ भावना मैंने रखनी है। वास्तव में सबके प्रति शुभ भावना रखना ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। 99 आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, एक आत्मा के प्रति नहीं है, तो मेरा जो सर्टिफिकेट भगवान से मिलना है संपूर्ण पवित्रता का, वो सर्टिफिकेट अभी भी अटका हुआ है। इसलिए मुझे वो जो आखिरी व्यक्ति है उसके भी प्रति शुभ भावना रखना है और मेरा सर्टिफिकेट बाबा से लेना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है, कोई किसी भी आत्मा हो, किसी आत्मा में कोई भी कमी हो, त्रुटि हो, लेकिन उसको न देखते हुए उस आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखें और अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप को देखें, तो स्वतः ही हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ भावना सदा पनपती रहती है। बाद में सातवीं बात, सदा बाबा के स्मृति में टिकने के लिए याद का चार्ट हो सके तो मेंटेन जरूर करना है। मैं पहली बार हिस्ट्री हॉल में 73 में बाप दादा से मिल रहा था, नागपुर से आया था पहली बार बाबा से मिलने के लिए। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुझे मिले पर्सनली मुरली के बाद, बाबा ने मुझे दृष्टि दी, दृष्टि देने के बाद पहला महावाक्य उच्चारण किया, कि अगर इस ईश्वरीय जीवन में सदा उन्नति करना चाहते हो तो सदा याद का चार्ट मेंटेन करना, ये वरदान बाबा ने मुझे दिया। तो मैं एक साल का बच्चा था, मुझे इतना उसका पता नहीं चला, लेकिन जब मैं मधुबन में आया दादी जी के क्लासेस और बाबा की मुरलियों को सुनकर मैंने हर घंटे का चार्ट अपना बनाया और एक साल तक मैंने उसको मेंटेन किया। और उसके बाद जब बाप दादा से पर्सनली मिला तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका याद का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में ब्राह्मण जीवन में उन्नति हम चाहते हैं तो चार्ट हमें बहुत मदद करता है। ये चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। चार्ट रखने से मन बुद्धि जो आत्मा के आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत शैतानी की है, द्वापर युग से माया के संग में रहकर सारे खजाने लुटा दिए हैं, उन दोनों बच्चों को हम अच्छी तरह से डिसिप्लिन में रख सकते हैं, अनुशासन और नियंत्रण में रख सकते हैं और पूरा बिजी रखकर हर पल हर घड़ी उनसे हम अविनाशी सच्ची कमाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये चार्ट हमें बहुत मदद करता है। तो मन बुद्धि को हमें काम देना है और एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद चेक करना है कि उन्होंने कितना ये काम किया, कितना परसेंट उसमें सफलता मिली। तो चेकिंग और चेंजिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से होती रहती है। इसलिए जितना हो सके याद का चार्ट मेंटेन करते चले। आठवीं बात है, सदा स्मृति स्वरूप बनने के लिए स्मृति स्वरूप के साथ साथ समर्थी स्वरूप बनने के लिए, अभी हमें समर्थ स्वरूप भी बनना अनुभव करना है, शक्तियों का स्टॉक जमा हो ऐसा भी हमें अनुभव करना है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करना। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है शक्तियों का स्टॉक तब बढ़ेगा जब व्यर्थ का लीकेज को स्टॉप करेंगे, क्योंकि हम बाबा से शक्तियां लेते हैं अमृत वेले नमा शाम के योगाभ्यास के द्वारा, थोड़ी शक्तियां यूज करते हैं और थोड़ी शक्तियां लीकेज के द्वारा वेस्ट भी होती हैं। अभी किसी भी हालत में हमने इस व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करना है। देखो आपके घर में म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, वाटर टैंक में आता है, लेकिन आप अपने नौकरी धंधे पर गए और आपका जो बच्चा है उसने थोड़ा सा नल खोल के वो बंद करना भूल गया, थोड़ा सा चालू रखा, तो शाम को जब आते हैं तो टांकी में पानी नहीं है। पानी तो आया भाई, लेकिन क्या हुआ, लीकेज होके चला गया। तो व्यर्थ के लीकेज को हर संभव हमें बंद करना है, उसके लिए तीन युक्तियां हैं। पहली युक्ति, हमें अपने माथे पर फुल स्टॉप लगाना है और सामने आने वाली व्यक्ति के मस्तक पर भी फुल स्टॉप लगाना है। मैं आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक शिव पिता की संतान, बात खत्म। लेकिन हम स्वयं को देह समझकर सामने वाले व्यक्ति को देह समझते हैं, ये फलाना व्यक्ति है, इसका ये नाम है, ये चंडीगढ़ से आया है, इसमें ये कमी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये विशेषता है, बिना मतलब 5-7 संकल्प यूं ही चल पड़ते, कोई जरूरत नहीं है। वी आर द सोल्स चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर, बात खत्म। ये पहली युक्ति। हाँ, अच्छी तरह से बजाओ ना, अच्छी तरह से बजाओ ना जरा। क्योंकि बाबा बाबा ऊपर से देखते हैं, मेरे बच्चे इतना पुरुषार्थ कर रहे लेकिन बैटरी चार्ज हो ही नहीं रही, आगे बढ़ ही नहीं रही। 10 साल से 20 साल से कर रहे चार्ज आत्मा की बैटरी, इसलिए बाबा ने इशारा दिया व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करो। दूसरी युक्ति, जब भी कोई बहुत अच्छी बात होती है ना, हम 50 लोगों को बताए फिरते हैं, और ना अच्छी बात होती है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है जिससे बहुत एनर्जी खर्च होती है, लीकेज के द्वारा वेस्ट होती है। इसलिए हमें ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है वो एक बात है, लेकिन ड्रामा के ज्ञान को यूज करना ये दूसरी बात है। जो भी दर्श मेरे सामने आ रहा है केवल और केवल ये रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। हर कब आप पंजाब से यहाँ आएंगे और ऐसी सुंदर भट्टी बाबा के घर में हर कब करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कितनी अच्छी बात है भाई। तीसरी युक्ति, व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने के लिए तीसरी युक्ति है, खाली मन शैतान का घर। मन को हमें खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ज्ञान का भोजन उसको खिलाते जाना है तो व्यर्थ संकल्प खत्म होते जाएंगे और समर्थ संकल्प मन में बढ़ते जाएंगे। इसलिए विचार सागर मंथन करना ये हमारी हॉबी होगी तो समर्थ संकल्प बढ़ते जाएंगे और व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। मुरली क्या है? परमात्मा के शक्तिशाली संकल्पों का शक्तिशाली आत्मा के लिए भोजन, इसको ही मुरली कहते हैं। तो ऐसे व्यर्थ के लीकेज को हमने स्टॉप करना है। नवी बात, स्मृति स्वरूप बनकर रहने के लिए सेवा हम बहुत कर रहे हैं, लौकिक सेवा अलौकिक सेवा बहुत बिजी हैं, तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट हल्का अनुभव करना है। क्योंकि लाइट रहेंगे तो बाबा के पास लाइट मिलेगी और बाबा की स्मृति में हम सहज टिक जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी के बोझ को बाबा के कंधे पर रखना है। एक बार क्या हुआ, 87 की बात है, विदेशी लोग ओम शांति भवन में बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने मुरली चलाई, मुरली के बाद बाबा ने किस पूछा, किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलो। तो एक भाई खड़ा होकर पूछने लगा कि बाबा हमें बहुत सेवा करने पड़ती है, सेवा लौकिक सेवा का जो जॉब है जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ता है, बाबा का सेवा केंद्र है, लौकिक जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है, दिन भर घोड़े की तरफ भागना पड़ता है और जब थक जाते हैं और जब अमृत वेले बैठते हैं तो सास में माया को सल्यूट मारते रहते हैं, माया को नमस्कार करते ही रहते हैं, क्या करे बाबा, ये प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कहा, इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति ब्रह्मा बाबा है, उनसे बढ़कर बिजी संसार में कोई नहीं है। सबसे बिजी रहकर से बिजी रहकर, सबसे इजी रहकर बाबा नंबर वन कर्म योगी सैंपल बने। वो तुम्हारा बाप है, आपका बाप है, किसी और का नहीं है। अगर आपका बाप ऐसा उदाहरण मूर्त बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। तो इस बात को सुनकर उसने थोड़ी लंबी सांस लिया। हो सकता है ना भाई। हवा की बातें हम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल हैं, एग्जांपल हैं। हमें केवल उनको फॉलो करना है। इसलिए जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को एकदम लाइट अनुभव करना है। ठीक है भाई। और दसवीं बात, स्मृति स्वरूप रहने के लिए दसवीं बात है, मन मना भव का मंत्र का जाप करते करते कभी बोर होने लगता है। क्यों बोर होने लगता है भाई? कोई भी काम हम जब करते हैं ना, काम करने के पहले सोचते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या। भाई आप पंजाब से यहाँ आए, पहले सोचा कि भाई मधुबन में भट्टी के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, रिफ्रेशमेंट होगा, बहुत अच्छी प्राप्तियां होगी, ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ आप पहुंचे। अब मन मना भव से हमें अविनाशी कमाई मिलती तो है, लेकिन उससे हमें मिलेगा क्या। तो मध्याजी भाव का जो इतना बड़ा लड्डू बाबा 21 जन्मों की बादशाही का देते हैं, उस मध्याजी भाव के मंत्र का जाप बीच बीच में जरूर करना है। वो लड्डू भूल जाते हैं, इसलिए मन मना भाव के मंत्र का जाप करने में रुचि कम होती है। अब इतना बड़ा लड्डू बाबा ने दिया है, इतना बड़ा लड्डू कोई दे सकता है भाई? कृष्ण के हाथ में इतना बड़ा गोला दिखाते हैं, हमें इतना बड़ा गिफ्ट कोई दे सकता है? कोई दे नहीं सकता है। लेकिन माया कहती है, मैं भी तुम्हें दो लड्डू देती हूँ, आओ मेरे पास, आओ इधर आओ। कोई माया के लड्डू ऐसे है, जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। कौन से लड्डू है माया के? रूप और रुपया, ये दो लड्डू से माया अपने तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास करती है, कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन हमें इतना बड़ा वर्षे का लड्डू बाबा दे रहे हैं, इसलिए इस लड्डू में कोई बात कई रस रखा नहीं है। इसलिए हमें मस्ती में मस्त रहना है और स्मृति स्वरूप बनने का पूरा प्रसाद करना है। इसमें हमें लोभी बनना है, हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करना। भाई इतनी बड़ी सारे कल्प में कभी भी नहीं होती है, केवल संगम युग में होती है। तो इसमें लोभी बनने चाहिए कि नहीं भाई? बनना चाहिए कि नहीं? जरूर बने, शुद्ध लोभ है। इसलिए बाबा का भी यही इशारा है, बाबा की ही यही आशा है कि मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम रोशन करे, ये बाबा की इच्छा है। तो अभी हम चंद्र घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। करना चाहते हैं भाई? सभी करना चाहते हैं? सभी करना चाहते हैं? वाह बहुत अच्छी बात है। थोड़ा दो मिनट जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। थोड़ा सुस्ती का समय है ना, इसलिए थोड़ा चुस्त होने के लिए तालियां बजाए। अभी सभी थोड़ा सा एकदम चुस्त और मस्त होके बैठो, डायरी पेन सब कुछ पर्स वर्स सब हटा दो, आजाद पंछी बन के बैठो। ओम शांति। चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी नीलाकारी बाप की स्मृति के लिए तपस्या में लीन हूँ। अशरीरी स्थिति का सुंदर अनुभव मैं निराकारी आत्मा इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में निराकारी शिव पिता की स्मृति में टिकने के लिए प्रसाद कर रहा हूँ। तपस्या में मगन हूँ। शांत गुणों वाला आत्मा तपस्वी इस गुफा में विराजमान हूँ। शांत गुणों की किरणें प्रकंप आत्मा से चारों ओर फैले मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा से न्याली होकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार जना फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुका, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर लिए है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट प्यार, अति मीठे शिव बाबुल भी उनकी प्रकृति में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का, बाबा के दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा चुका हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शिकिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो इस फरिश्तों की दुनिया में आओ और जो संबंध मुझसे अनुभव करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, गोदी में खेलो, मेरी अंगुली पकड़कर चलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मुझे अपने शिक्षक पर नाज है, हर रोज दूर तेज से आकर मुरली में ज्ञान के कुंज राज मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदहस्त सदा अपने सिर पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही चित्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पृथ्वी रूपी विमान निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओ मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिव बिल्कुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर स्वरूप को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता के सागर की सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिविका से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिविका से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे, भस्म होती ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ। वहाँ मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः शरीर रूपी चैतन्य गुफा में प्रकृति के काल तत्व पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुके हूँ। मन शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चार